السلام علیکم، یہ پارٹ 11 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 11. اس لیے میں چونکا تھا اور میں نے تم سب کی آنکھیں چیک کی تھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن یہ بلو اسپاٹس ہیں کیا، اور ان سے پریشانی کی کیا بات ہے، جولیا نے پوچھا. یہ پوچھو کون سی پریشانی والی بات نہیں ہے، عمران نے مسکرا کر کہا. چلو یہی بتا دو، جولیا نے جواباً مسکرا کر کہا. آنکھوں کے حلقوں کے کناروں پر موجود بلو اسپاٹس اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ ہم بلیک ہارٹ ایجنسی کی نظروں میں ہیں. وہ ہمیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کو کیمرے سے لائیو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم پر باقاعدہ لائٹ فلیش کیا گیا ہے اور ہماری آنکھوں میں اس کا اثر جذب ہو گیا ہے. لائٹ فلیش کا لنک ایک سیٹلائٹ سے ہوتا ہے جس سے ہمیں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، عمران نے انہیں تفصیل بتائی تو ان کے چہروں پر بھی تشویش کے سائے لہرانے لگے. لیکن یہ لائٹ فلیش ہماری آنکھوں میں آیا کیسے؟ اب تک تو ہمارا کسی سے سامنا بھی نہیں ہوا ہے، جولیا نے کہا. اس کے لیے ایک مخصوص کیمرے سے ہماری تصویریں کھینچی گئی ہوں گی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا. اس لائٹ فلیش کا اثر کئی روز تک رہتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک لائٹ فلیش کا اثر رہتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی ہے، عمران نے جواب دیا. کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں بلیک ہارٹ ایجنسی ہی چیک کر رہی ہو، صدیقی نے پوچھا. ان کے سوا کسی اور کا یہ کام نہیں ہو سکتا، ورنہ 20 کیمپ والے ہمیں کب کا گھیر کر ہلاک کر چکے ہوتے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہم پر لائٹ فلش اس وقت کی گئی تھی جب ہم سب ایک ساتھ تھے، اور ایسا یا تو پاکشیا میں ہوا ہوگا یا پھر اوگان ایئرپورٹ پر، کیونکہ اس کے بعد میں تم سب سے الگ ہو گیا تھا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے 00 کے ساتھ کام کرتا رہا تھا. اور ٹینکر میں ہم رات کے اندھیرے میں آئے تھے، اور اندھیرے میں اگر لائٹ فلش کیا گیا ہوتا تو مجھے اس کا فوراً پتہ چل جاتا، عمران نے کہا. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم کافی دنوں سے اس لائٹ فلش کا شکار بنے ہوئے ہیں، سبدا نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا. ہاں، حلقوں کے کناروں کے بلو اسپاٹ سے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ فلش کا شکار ہوئے ہمیں 8واں یا 9واں روز ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا. اگر 8-9 روز سے ہم لائٹ فلش کا شکار ہیں اور بلیک ہارٹ ایجنسی ہمیں باقاعدہ چیک کر رہی ہے، تو پھر وہ اب تک خاموش کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ انہیں تو بہت پہلے ہی ہم پر حملہ کر دینا چاہیے تھا، سبتا نے کہا. ہاں، اس بات سے تو میں بھی حیران ہوں، واقعی انہیں بہت پہلے حرکت میں آ جانا چاہیے تھا. بلکہ لائٹ فلش سے تو وہ اس بات کا بھی پتہ چلا سکتے تھے کہ ہم تیل سے بھرے ٹینکر میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے تو اس ٹینکر کو اوگان میں ہی اڑا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. اور اب بلیک ہارٹ ایجنسی کی ایک ٹیم ان ٹینکروں کو چیک کرنے کے لیے آ رہی ہے. اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، عمران نے کہا. کیا؟ جولیا نے پوچھا. ایک تو یہ کہ وہ جان بوجھ کر ہمیں دھیر دے رہے ہیں کہ ہم اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں اور ہمارے کن سکن سے لنک ہے، عمران نے کہا. اور دوسری بات؟ جولیا نے پوچھا. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی سیٹلائٹ مشین میں کوئی فالٹ آ گیا ہوگا، اس لیے وہ اب تک ہمیں چیک نہیں کر سکے ہوں گے. اب جب ان کی مشین ٹھیک ہوئی ہوگی تو انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، عمران نے جواب دیا. پھر سے پہلے کہ ان میں مزید بات ہوتی، اچانک میجر ٹام کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے. عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا और इसने फौरन मेजर टॉम की जेब में हाथ डालकर इसका सेल फोन निकाल लिया। इमरान ने सेल फोन देखा तो इस पर कर्नल हैमर का नाम फ्लैश हो रहा था। इमरान ने मुंह पर उंगली रखकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और सेल फोन की रिसीविंग पर की प्रेस करके सेल फोन कान से लगा लिया। इसी लम्हे इन्हें बाहर हेलीकॉप्टरों के होटरों की तेज गड़गड़ाहटों की आवाजें सुनाई देने लगी। यस मेजर टॉम स्पीकिंग, इमरान ने मेजर टॉम की आवाज की नकल करते हुए कहा। कर्नल हैमर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल हैमर की कख्त आवाज सुनाई दी। यस सर हुक्म, इमरान ने कहा। ब्लैक हार्ट एजेंसी वाले यहाँ पहुँच चुके हैं, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से कर्नल हैमर ने पूछा। मैं बस अभी आ रहा हूँ जनाब, इमरान ने कहा। इस टैंकर का क्या किया है, इसे तबाह किया है या नहीं? कर्नल हैमर ने पूछा। यस सर, अब तक तो वो टैंकर जल कर राख बन चुका होगा, इमरान ने जवाब दिया। गुड, अब तुम फौरन वापस आओ, देखते हैं ब्लैक हार्ट एजेंसी वाले यहाँ आकर क्या करते हैं, कर्नल हैमर ने कहा। यस सर, मैं बस आ रहा हूँ, इमरान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से कर्नल हैमर ने रब्ता खत्म कर दिया। अब इनकी हुलियों में हमारा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम बाकायदा ब्लैक एजेंसी वालों की नजरों में हैं। हम जिस रूप में भी होंगे वो हमें देख लेंगे, इसलिए अब हमें 20 कैंप जाकर धावा बोलना है। अब जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम तनवीर एक्शन करें, इमरान ने कहा और इसकी बात सुनकर तनवीर की आंखें चमक उठी। इसी लम्हे इमरान एक बार फिर चौंक उठा। इस बार इसकी नजरें गार के दहाने की तरफ उड़ गई थीं, जहाँ से वो सब अंदर आए थे। असला उठाओ जल्दी, हमें इस गार से बाहर निकलना है वरना हम सब इस गार में ही दफन हो जाएंगे, इमरान ने चीखते हुए कहा और अपना असला उठाकर बिजली की सी तेजी से दहाने की तरफ भागता चला गया। इसके बाद सुनकर इन सब ने भी असला उठाया और बिजली की सी तेजी से दहाने की तरफ भागने लगे। दूसरे लम्हे माहौल एक तेज आवाज से गूंज उठा। हॉर्गन अपने साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर लाया था जिसमें इसके और पायलटों समेत 20 अफराद मौजूद थे। इसके लड़ाका साथियों की तादाद 15 थी और एक वो खुद था और बाकी 4 पायलट थे। इसके साथी हर तरह के असले से लीस थे। हेलीकॉप्टर नहायत तेज रफ्तारी से अफगान की सरहद की तरफ उड़े जा रहे थे जहां काक फिल्ले के कहने के मुताबिक 9 पाकिस्तानी एजेंट मौजूद थे और हारगन को इन सब एजेंटों को हर हाल में हलाक करने का टास्क दिया गया था। हारगन का ताल्लुक ब्लैक हार्ट से ही था जो स्पेशल फोर्स का इंचार्ज था और स्पेशल फोर्स का सेक्शन तेज रफ्तार और नॉन स्टॉप एक्शन करने में अपना सानी नहीं रखता था। इस सेक्शन का कोड नाम एस ग्रुप था और एस ग्रुप जब भी हरकत में आता था तो मुजरिमों और गैर मुल्की एजेंटों को इनसे भागने के लिए वाकई ना कोई रास्ता मिलता था और ना ही कोई पना। ये ग्रुप इस वक्त तक एक्शन में रहता था जब तक कि वो अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा न कर दे। इस ग्रुप के बारे में कहा जाता था कि ये मुजरिमों का कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता था और इन्हें हलाक करने के लिए बेदरीक असला इस्तेमाल करता था। हॉर्गन को काफिले ने पहले से ही पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में बता रखा था। इसने हॉर्गन से कहा था कि पाकिस्तानी एजेंट किसी भी वक्त इसराइल में दाखिल हो सकते हैं, इसलिए वो अपने ग्रुप को हर वक्त तैयार रखे। जैसे ही इसे मालूम होगा कि पाकिस्तानी एजेंट इसराइल में पहुंच गए हैं वो इसे कॉल कर देगा और फिर हॉर्गन एस ग्रुप को लेकर इनकी सरकूबी के लिए निकल जाए। काफिले ने हॉर्गन को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि इसे हर हाल में पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करना है और ये काम इसे इस अंदाज और तेजी से करना है कि इसके बारे में चीफ को कुछ भी मालूम ना हो। काफिले चूंकि ब्लैक हार्ट एजेंसी का नंबर 2 था इसलिए हॉर्गन के लिए इसका हर हुक्म चीफ के हुक्म जैसा ही था। इसलिए वो कॉकफिल्ले की कॉल के इंतजार में ही था कि जैसे ही कॉकफिल्ले इसे कॉल करेगा वो पाकिस्तानी एजेंटों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसी वक्त निकल खड़ा होगा और फिर वो इन एजेंटों का इस कदर भयानक हशर करेगा कि दोबारा कोई पाकिस्तानी एजेंट इसराइल की सरहद के नजदीक भी आने की कोशिश नहीं करेगा। कॉकफिल्ले ने इसे 9 पाकिस्तानी एजेंटों की आने की इतला दी थी जो 20 कैंप में कहीं मौजूद थे। अपाचे हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज रफ्तार थे। 301 में 20 कैंप जो दारुल हुकूमत से तवील फासले पर था, इन्हें वहां तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा था। 20 कैंप के टावर सेक्शन से इनका रास्ता हो गया था और इन्हें हेलीकॉप्टर 20 कैंप में लाने की इजाजत दे दी गई थी और अब चारों हेलीकॉप्टर 20 कैंप के वस्ती हिस्से में उतर रहे थे। अभी हेलीकॉप्टरों के पैड जमीन से लगे ही थे कि इसी लम्हे हॉर्गन के सेल फोन की घंटी बज उठी। हॉर्गन ने फौरन जेब से सेल फोन निकाला। सेल फोन ट्रांसमीटर सेटअप पर था क्योंकि स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले नहीं होती थी, इसलिए स्क्रीन पर ना कोई नाम आता था और ना कोई नंबर, सिर्फ स्क्रीन फ्लैश होना शुरू हो जाती थी। हॉर्गन ने फौरन एक बटन प्रेस किया तो फ्लैश होती हुई स्क्रीन की फ्लैशिंग रुक गई और स्पीकर से टू टू की आवाज सुनाई देने लगी। हॉर्गन ने एक और बटन दबाया तो उसे कॉकफिल्ले की आवाज सुनाई दी जो उसे कॉल दे रहा था। यस बॉस हॉर्गन अटेंडिंग यू ओवर, हॉर्गन के कॉकफिल्ले की कॉल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुम 20 कैंप में पहुंच चुके हो, ओवर, दूसरी तरफ से कॉकफिल्ले की तेज आवाज सुनाई दी। यस बॉस मैं अभी पहुंचा हूं, हेलीकॉप्टर 20 कैंप में लैंडिंग कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको कॉल करने ही वाला था, ओवर, हॉर्गन ने मोरबाना लहजे में कहा। सुनो तुम हेलीकॉप्टर 20 कैंप के जनूबी पहाड़ियों की तरफ ले जाओ। पाकिस्तानी एजेंट पहले एक ऑयल टैंकर में छुपे हुए थे, अब वो इस टैंकर से बाहर आ गए हैं और एक पहाड़ी गार में छुप गए हैं। तुम फौरन इस तरफ जाओ और इस पहाड़ी को घेरे में ले लो और इन सबको वहीं हलाक कर दो। जाओ फौरन जाओ, ओवर, दूसरी तरफ से कॉकफिल्ले ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। ओ ठीक है, वो किस पहाड़ी में मौजूद है, ओवर, हॉर्गन ने पूछा। 20 कैंप के जुनूब में एक रेटी गान की पहाड़ी है जिसकी चोटी पर एक सफेद रंग की बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई है। इस चट्टान पर सिंह रंग का क्रॉस का एक निशान भी बना हुआ है। वो सब इसी पहाड़ी के अंदर मौजूद है, ओवर, कॉकफिल्ले ने कहा। ओ ठीक है, मैं अभी जाकर इस पहाड़ी को उड़ा देता हूँ, हॉर्गन ने कहा। ध्यान रखना इनके पास भी असला है, ऐसा ना हो कि वो उल्टा तुम पर हमला कर दें, ओवर, कॉकफिल्ले ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि वो हम पर हमला कर सके, ओवर, हॉर्गन ने कहा। ओके, जब वो सब हलाक हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजर रहूंगा, ओवर, कॉकफिल्ले ने कहा। यस बॉस, ओवर, हॉर्गन ने कहा और दूसरी तरफ से कॉकफिल्ले ने ओवर एंड ऑल कहकर रास्ता खत्म कर दिया। इस वक्त तक चारों हेलीकॉप्टरों के पैड जमीन से लग चुके थे। कुछ फासले पर एक अधेड़ उम्र मिलिट्री ऑफिसर कई फौजियों के साथ मौजूद था। इस अधेड़ उम्र ऑफिसर को देखते ही हॉर्गन ने पहचान लिया था, वो 20 कैंप का इंचार्ज कर्नल हैमर था। हॉर्गन ने सामने हुक में लगा हुआ हेडफोन उठाया और इसे अपने कानों पर चढ़ा लिया। हेडफोन के साथ माइक भी लगा हुआ था। ऑल ब्लैक बर्डर्स अटेंडिंग, ऑल ब्लैक बर्डर्स अटेंडिंग, ओवर, इसने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस बॉस, ऑल ब्लैक बर्डर्स अटेंडिंग यू, ओवर, दूसरी तरफ से पायलटों की एक साथ आवाज सुनाई दी। हम यहाँ लैंडिंग नहीं करेंगे, दुश्मन जनूबी पहाड़ियों में मौजूद हैं। तमाम ब्लैक बर्डर्स जनूबी पहाड़ियों की तरफ जाएंगे। जनूबी पहाड़ियों में एक ऐसी पहाड़ी मौजूद है जिसकी चोटी पर एक बुक व्हाइट राख है, इस राख पर सिया क्रॉस का निशान बना हुआ है। हमें इस पहाड़ी को घेरना है, दुश्मन इस पहाड़ी के अंदर मौजूद हैं। ओवर, हार्गन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। यस बॉस, ओवर, हेलीकॉप्टरों के पायलटों ने मौदबाना लहजे में कहा। टेक अप नाउ, ओवर, हार्गन ने कहा, और साथ ही इसने अपने हेलीकॉप्टर के पायलट को इशारा किया, तो इसने सर हिलाकर हेलीकॉप्टर एक बार फिर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बाकी हेलीकॉप्टर भी ऊपर उठने लगे। इन हेलीकॉप्टरों को इस तरह वापस ऊपर जाते देखकर वहां खड़ा कर्नल हैमर हैरान हो रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हेलीकॉप्टर वापस ऊपर क्यों जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर कुछ बुलंदी पर आए और फिर इनके रुख जुनूब की तरफ मुड़ते चले गए, और फिर पायलट ने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। चूंकि हेलीकॉप्टर ज्यादा बुलंदी पर नहीं थे, इसलिए हार्गन और पायलट आसानी से नीचे पहाड़ियों को देख सकते थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर बुलंद हुआ और उसका रुख जुनूब की तरफ हुआ, हार्गन को कुछ फासले पर मौजूद वो पहाड़ी दिखाई दी गई, जिस पर एक बड़ी सी सफेद रंग की चट्टान टिकी हुई थी। इस पर सियह रंग से एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। वो रही ब्लैक क्रॉस वाली व्हाइट रॉक। हमें इसी पहाड़ी की तरफ जाना है, हार्गन ने तेज लहजे में कहा। इसने चूंकि तमाम हेलीकॉप्टरों से लिंक कर रखा था, इसलिए इन सब ने भी इस सफेद चट्टान को देख लिया था जिस पर सियह रंग का क्रॉस बना हुआ था। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़े और इस पहाड़ी के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ एक मैदान में आ गए। पहाड़ी से फासले पर रख कर हेलीकॉप्टर उतार दो, हेलीकॉप्टरों की गनों और मिसाइलों का रुख पहाड़ी की तरफ कर दो, हार्गन ने तेज लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे हेलीकॉप्टर मुड़े और इन हेलीकॉप्टरों की गनों और मिसाइलों के रुख सफेद चट्टान वाली पहाड़ी की तरफ हो गए, और हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते चले गए। जैसे ही हेलीकॉप्टरों के पैर जमीन से लगे, इसी लम्हे हेलीकॉप्टरों के दरवाजे खुले और हेलीकॉप्टरों से मखसूस सियह लिबासों में मुलविस मुसल्ला अफराद कूदना शुरू हो गए। इस मुसल्ला अफराद के हाथों में मशीन गने और मिसाइल गने दिखाई दे रही थीं, और इनके लिबासों में बाकायदा पार्ट्स बने हुए थे जिनमें फालतू मैगजीन के साथ खतरनाक बम भी मौजूद थे, और इन सब ने मुंह पर बाकायदा गैस मास्क लगा रखे थे। हेलीकॉप्टरों से कूदते ही वो कमांडो अंदाज में भागते हुए सफेद चट्टान वाली पहाड़ी के गिर्द फैलते चले गए, और उन्होंने फौरन सामने नजर आने वाले एक गार के दहाने को देखकर पोजीशनें संभाल ली। जैसे ही फोर्सेस ने पोजीशनें संभाली, हार्गन ने हेलीकॉप्टरों को दोबारा बुलंद होने का हुक्म दिया। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर ऊपर उठे और फिर तेजी से पहाड़ी के गिर्द घूमते हुए हवा में मुअल्लिक हो गए। चार हेलीकॉप्टरों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अपने निशाने पर ले लिया था। हार्गन का हेलीकॉप्टर सामने के रुख पर था, जहाँ से वो पहाड़ी के गार के दहाने को साफ देख सकता था। चंद लम्हे हार्गन दहाने की तरफ देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर कंट्रोल पैनल के साथ लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। इसके सर पर हेडफोन चढ़ा हुआ था। इसने हेडफोन के साथ लगा हुआ माइक अपने होठों के पास किया और तेज आवाज में बोलना शुरू हो गया। इसकी आवाज हेलीकॉप्टर के नीचे लगे हुए मेगाफोन से पूरे इलाके में गूंजने लगी। मैं एस फोर्स का कमांडर हार्गन इन नौ पाकिस्तानी एजेंटों से मुखातिब हूँ जो पहाड़ी गार में छुपे हुए हैं। मैं इन पाकिस्तानी एजेंटों को बता देना चाहता हूँ कि वो सब मेरे घेरे में हैं और मेरे पास मुसल्ला फोर्स मिसाइलों और बमों की कोई कमी नहीं है जिससे मैं इस सारी पहाड़ी को उड़ा सकता हूँ। तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। तुम सब अपना असला गार में छोड़कर और दोनों हाथ सर से बुलंद करके गार से निकलकर बाहर आ जाओ। अगर तुम सब ने खुद को सरेंडर कर दिया तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं तुम सबको जिंदा रहने का सिर्फ एक चांस दे सकता हूँ, और वो भी सिर्फ एक मिनट का चांस। अगर तुम सब अपना असला फेंक कर खाली हाथ घर से निकल आते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा गिरफ्तार करके ले जाएंगे। बसूरत दीगर इस पहाड़ी के साथ तुम सबके भी चितड़े उड़ा दिए जाएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तुम्हारे पास सरेंडर करने का सिर्फ एक मिनट है, और जैसे ही एक मिनट खत्म होगा इस पहाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। तुम्हारा एक मिनट अब शुरू हो गया है, लहारगा ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और फिर वो खामोश हो गया। साथ ही इसने हाथ उठाया और उसकी नजरें अपनी रेस्ट वॉच पर जम गई। रेस्ट वॉच देखते ही वो बार बार सामने घर की तरफ देख रहा था। 15 सेकंड गुजर चुके हैं, हारगर ने कहा, लेकिन इसे घर के दहाने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था, जैसे इसे यकीन हो कि बाकी शयजन इसकी आवाज सुनकर घर से जरूर निकल कर बाहर आ जाएंगे। 30 सेकंड गुजर गए हैं, अब तुम्हारी जिंदगियां बचने के सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। हारगन ने रेस्ट वॉच देखते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, लेकिन इसके बावजूद वहां खामोशी थी। वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी बात मान जाओ, वरना, हारगन ने इसी तरह इंतहाई सख्त लहजे में कहा, लेकिन घर का दहाना इसी तरह से खाली था। वहां इंसान तो कजा किसी इंसान का हरकत करता हुआ साया भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ 15 सेकंड है तुम्हारे पास, हारगन ने एक मतवा फिर कहा, लेकिन ला हासिल पाकिस्तानी एजेंट्स जैसे इसकी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। अब मैं अकाउंट डाउन शुरू कर रहा हूँ, हारगन ने लेफ्ट वॉच की तरफ देखते हुए कहा। 10, 9, 8, हारगन ने काउंट डाउन शुरू कर दिया, लेकिन अब भी दहाने से कोई बाहर नहीं आया था और न ही किसी के वहां से बाहर आने की कोई आसार दिखाई दे रहे थे। 7, 6, 5, 4, हारगन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। 3, 2, 1, ओके, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, हारगन ने चीखते हुए कहा। इससे पहले कि वो अपनी फोर्स को पेश कदमी या फायरिंग का हुक्म देता, अचानक गार के दहाने से एक रॉड सा आकर बहे गया। इससे पहले कि हारगन और उसके साथी कुछ समझते, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सुख रंग की तेज रोशनी से पैदा हुई और हारगन की आंखों में यकलक जैसे आग सी भर गई और इसके मुंह से बेख्तियार जोरदार चीख निकल गई। हिस्से अव्वल खत्म शुद। डेविल माइंड हिस्सा दोम। घर के दहाने के नजदीक आते ही इमरान दीवार के साथ चिपक गया। इसने सर पर रखी हुई गागुल फौरन आंखों पर चढ़ा ली थी और फिर इसने गागुल की साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक गागुल के गिलास नीले रंग के हो गए। अब वो गागुल से किसी टेलीस्कोप की तरह से आसानी से बाहर देख सकता था। वो जिस दीवार के साथ चिपका हुआ था वह एक बड़ा सा पत्थर बाहर की जानिब निकला हुआ था जिसकी आड़ में वो आसानी से छुप गया था। क्रॉस विजनल ग्लासेस से वो इस पत्थर के आर पार भी देख सकता था। इसने बाहर देखा तो इसे हर तरफ सियाह लिबासों में मौजूद मुसल्ला फोर्स दिखाई दी जो पहाड़ी के गिर्द नीम दायरे में पोजीशन संभाले हुए थी और इनकी मशीन गनों का रुख इसी गार की तरफ था। इमरान ने सर उठाया तो इसे हवा में तकरीबन 50 फीट की बुलंदी पर सियाह रंग का एक अपाचे हेलीकॉप्टर फिजा में मौलिक दिखाई दिया जिसमें लगी गनों और मिसाइलों का रुख भी इसी गार की तरफ था। इसी दौरान इसके साथी भी आकर गार की दाएं बाएं दीवारों के साथ लग गए थे। इनमें से चौहान और खावर के हाथों में मिसाइल गनें थी जबकि बाकी सब ने मशीन गनें संभाल रखी थी और वो फुल एक्शन में आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बाहर मौजूद फोर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर को देखकर इमरान के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई थी। इसे हेलीकॉप्टर में लगे हुए मेगाफोन से हारगन की आवाज साफ नहीं दे रही थी और जब हारगन ने काउंट डाउन शुरू की तो इमरान ने दाएं पहलू के साथ चमड़े की बेल्ट में बंधा हुआ एक रॉड बम्प खींच लिया। काउंट डाउन खत्म हो रही थी और फिर जैसे ही हारगन की काउंट डाउन खत्म हुई, इमरान ने रॉड के अगले हिस्से पर लगे बम को तेजी से घुमाया और इसके हाथ से रॉड बम निकल कर बाहर जा गिरा। अपनी आंखें बंद कर लो जल्दी, इमरान ने चीखते हुए कहा और उसने खुद भी आंखें बंद कर ली। इसी लम्हे बाहर एक जोरदार धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे आंखें बंद होने के बावजूद इसकी आंखों में सुख रंग की तेज रोशनी भर गई हो। यही हाल इसके साथियों का हुआ था। धमाके के साथ ही बाहर जैसे तेज और इंतहाई दर्दनाक चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। इमरान ने आंखें खोलकर बाहर देखा तो उसे मैदान में फौज जमीन पर गिरी बुरी तरह से तड़पती और चीखती दिखाई दी। जल्दी करो, फिल्म बाहर निकलकर इन सबको खत्म कर दो। मैंने रेड लाइट से वक्ती तौर पर इन्हें अंधा कर दिया है। इससे पहले कि ये देखने के काबिल हो, इन पर टूट पड़ो। रेड लाइट का असर महज 5 मिनट के लिए होता है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और गार से निकलकर तेजी से सामने की तरफ भागता चला गया। इसके साथ ही भी फौरन गार से बाहर आ गए। गार से बाहर निकलने ही इनकी मशीन गनों ने शोले उगलने शुरू कर दिए और माहौल मशीन गनों की मखसूस रेट रेट की आवाजों के साथ तेज इंसानी चीखों से बुरी तरह से गूंज उठा। इमरान ने फोर्स की तरफ भागते हुए मशीन पिस्टल से मुसलसल फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जो आंखें मलते हुए बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। गोलियों की बारिश में वो चीखते हुए उछल उछल कर गिरने लगे। इसी लम्हे इमरान ने इस हेलीकॉप्टर को तेजी से नीचे आते देखा जो हवा में मौलिक था। हेलीकॉप्टर बुरी तरह से डोल रहा था जिसे पायलट इसे कंट्रोल न कर पा रहा हो। शायद वो भी रेड लाइट का शिकार हो गया था इसलिए इसे हेलीकॉप्टर संभालना मुश्किल हो रहा था। इमरान ने सर घुमाया तो इसे पहाड़ी के दाएं बाएं दो और हेलीकॉप्टर इसी तरह से डोलते हुए दिखाई दिए। फिर एक हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आया और आगे की तरफ झुक गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर झुका, इसके घूमते हुए होटल्स एक पहाड़ी चट्टान से टकरा कर टूट गए और हेलीकॉप्टर जोरदार झटके से पलटा और उलटकर पहाड़ी से टकरा कर गिरता चला गया। दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर के पर्चे उड़ते दिखाई दिए। पहाड़ी के नजदीक दूसरा हेलीकॉप्टर डोलता हुआ नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ उठ रहा था। इसे ऊपर उठते देखकर चौहान फौरन घंटों के बाद जमीन पर बैठा और इसने मिसाइल गन का रुख इस हेलीकॉप्टर की तरफ करके लॉन्चर की का बटन दबा दिया। लॉन्चर का एक जोरदार झटका लगा और इसमें से एक मिसाइल निकलकर बिजली की सी तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर जैसे ही मिसाइल हेलीकॉप्टर से टकराया, आग का एक तूफान सा पैदा हुआ और हेलीकॉप्टर के टुकड़े उड़ते चले गए। जूलिया, तनवीर, सफदर, कैप्टन शकील और बाकी सब मशीन गनों से फोर्स को निशाना बना रहे थे। खावर ने नीचे आते हुए हेलीकॉप्टर को मिसाइल से निशाना बनाया चाहा, लेकिन इमरान ने चीख कर से ऐसा करने से रोक दिया। वो भागता हुआ इस तरफ जा रहा था जहाँ हेलीकॉप्टर लहराता हुआ नीचे आ रहा था। इस हेलीकॉप्टर का पायलट भी रेड लाइट का शिकार हो गया था इसलिए इसे भी हेलीकॉप्टर संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो हेलीकॉप्टर खासा नीचे ले आया था। और जब हेलीकॉप्टर 15 से 20 फीट की बुलंदी तक आया तो इमरान ने भागते भागते एक लंबी छलांग लगाई और किसी परिंदे की तरह हवा में उठता चला गया। हेलीकॉप्टर नीचे आते आते अचानक ऊपर उठने लगा था कि इमरान के हाथ हेलीकॉप्टर के एक पैड पर जम गए। दूसरे लम्हे वो हेलीकॉप्टर से लटका हुआ दिखाई देने लगा। हेलीकॉप्टर अब भी लहरा रहा था लेकिन अब वो नीचे आने के बजाय ऊपर उठ रहा था। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 12 में समाप्त फरमाएं।